एस्थर अध्याय तीन। जैसा कि हम अध्याय तीन में पढ़ते हैं, अध्याय तीन पद एक से लेकर सात तक। इन बातों के बाद राजा शयर्ष ने आगागी हामदाता के पुत्र हामान को उच्च पद दिया और उसको महत्व देकर उसके लिए उसके साथी हाकिमों के सिंहासनों से ऊंचा सिंहासन ठहराया और राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे वे हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, क्योंकि राजा ने उसके विषय ऐसी ही आज्ञा दी थी। परंतु मोर्देकाई ना तो झुकता था और ना उसको दंडवत करता था। तब राजा के कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे उन्होंने मोर्देकाई से पूछा, तो राजा की आज्ञा का क्यों उल्लंघन करता है? जब वे उससे प्रतिदिन ऐसा ही कहते रहे और उसने उनकी एक न मानी, तब उन्होंने ये देखने की इच्छा से कि मोर्देकाई की ये बात चलेगी कि नहीं, हामान को बता दिया। उसने तो उसको बता दिया कि मैं यहूदी हूं। जब हामान ने देखा कि मोर्देकाई नहीं झुकता और ना मुझको दंडवत करता है, तब हामान बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने केवल मोर्देकाई पर हाथ चलाना अपनी मर्यादा के नीचे जाना, क्योंकि उन्होंने हामान को ये बता दिया था कि मोर्देकाई किस जाति का है। इसलिए हामान ने शयर्ष के साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी मोर्देकाई की जाति जानकर विनाश कर डालने की युक्ति निकाली। राजा शयर्ष के 12वें वर्ष के निसान अप्रैल नामक पहले महीने में हामान ने आदार नाम 12वें महीने तक के एक एक दिन और एक एक महीने के लिए पूर अर्थात चिट्ठी अपने सामने डलवाई। दूसरे शब्दों में हामान यहूदियों के विनाश का दिन नियुक्त करना चाहता था। ये पहले महीने में हुआ। हामान ने हरेक महीने पर चिट्ठी डलवाई कि किस महीने यहूदियों का विनाश किया जाए। ये उसका अंधविश्वास था। चिट्ठी डालने पर 12वां महीना निकला, जो आजकल मार्च का महीना है। उनका वर्ष अप्रैल महीने से आरंभ होता था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक रोचक बात बताना चाहता हूं। हामान आगागी था। आगाग अमालेक का एक प्रांत था। अमालेकी पुराने नियम में शारीरिक बताए गए हैं। आपको याद होगा जब शमूएल राजा शौल के पास आया तो उसने कहा, परमेश्वर चाहता है कि तू उतरकर अमालेकियों को मार और पूर्ण रूप से खत्म कर दे, ना स्त्रियों को और ना बच्चों को छोड़ना, परंतु अपने साथ ना लूट का सामान, ना पशु, ना भेड़ लाना, कुछ मत लाना, परंतु सबको नष्ट कर देना। इसलिए शौल अमालेकियों के विरुद्ध गया और परमेश्वर ने उसे विजय बनाया। तो भी उसने पूर्ण रूप से परमेश्वर की आज्ञा ना मानी। उसने सबसे अच्छे पशुओं और भेड़ों को बचा रखा। राजा आगाग और उसके परिवार के लोगों को भी उसने जीवित रखा। जब शौल लड़ाई से लौट रहा था, शमूएल उसे मिलने गया और शौल ने शमूएल का स्वागत ये कहकर किया, प्रभु जीवित है, जैसे उसने मुझसे कहा है वैसा ही मैंने किया है। नबी शमूएल ने कहा, यदि तुमने वैसा ही किया है जैसा परमेश्वर ने कहा था, तो मैं पशु और भेड़ों की ये आवाज कहां से आ रही है? उसने कहा, हां ठीक है, वे इतने अच्छे मोटे और सुंदर पशु हैं, हमने निर्णय किया कि उन्हें ले जाकर हम अपने परमेश्वर को बलि चढ़ाए। शमूएल ने कहा, आज्ञा मानना बलिदान करने से और सुनना मेमने की चर्बी से उत्तम है। वो आगे कहता है, तुमने मूर्खता से काम किया है, क्योंकि तुमने परमेश्वर को अपने ऊपर राज्य करने से मना किया है, इसलिए परमेश्वर ने अपने लोगों पर से तेरा राज्य उठा लिया है, क्योंकि उसने आज्ञा ना मानते हुए अमालेकियों को पूर्णता नष्ट नहीं किया और राजा आगाग को जिंदा छोड़ दिया। अब देखिए, एक आगागी हामान इस घटना के करीब 600 वर्ष बाद यहूदियों को प्राण संकट में डालना चाहता है। परमेश्वर ने सर्वप्रथम ये आज्ञा क्यों दी कि उन्हें पूर्णतः नष्ट कर देना? हमें लगता है कि शमूएल की पुस्तक में परमेश्वर इस आज्ञा को देने में बहुत ही निर्दयी था, लेकिन परमेश्वर जानता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, अन्यथा वो उनको पूर्णतः नष्ट करने की आज्ञा कभी नहीं देता। परमेश्वर दूरस्थ भविष्य को देख सकता है। जब आप शारीरिक होते हैं तो ऐसी भावना उत्पन्न होती है, क्योंकि अमालेकी भी शारीरिक थे, शरीर के लिए जीते थे। परमेश्वर कहता है, हमारे शरीर की भावनाएं मार दी जाए। रोमियो 8:13। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। रोमी 6:6। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। परमेश्वर के पास शरीर को बदलने की अन्य कोई विधि नहीं है। पौलुस कहता है, रोमियो 7:18, मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई भली वस्तु वास नहीं करती। परमेश्वर ने शरीर को पूर्ण रूप से नष्ट करने की आज्ञा दी। शरीर के अनुसार ना जिए, ना चले, परंतु पुराना मनुष्यत्व और व्यवहार उतार दें और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने को अपने को मरा हुआ समझे। परमेश्वर ने ये मसीह के क्रूस में पूरा किया, ताकि मैं अपना पुराना मनुष्यत्व मसीह में मरा हुआ समझूं। पौलुस लिखता है, गलातियों 2:20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। सच तो यह है कि परमेश्वर ने आपकी देह को समाप्त कर देने की आज्ञा दी है, अर्थात उसके क्रूसीकरण की। आपका शरीर एक मृतक की गई कोई लालसा ना रखें। यदि आप शौल के समान परमेश्वर की आज्ञा मानने में चूक जाते हैं और अपनी देह के लिए कहीं न कहीं कोई स्थान छोड़ देते हैं और कहते हैं, ये तो एक छोटी सी बात है जहां मैं अपनी देह को प्रसन्न कर रहा हूं, ऐसे में आप निश्चित जानिए कि आपकी ये छोटी सी चूक सर्वनाश ढा देगी और आपकी आत्मिकता का नाश कर देगी। हमें शरीर के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ना चाहिए कि वो अपनी किसी लालसा की पूर्ति करें। हमें आत्मा के पीछे चलकर जीवन व्यतीत करना है, शरीर के लिए कोई प्रबंध नहीं करना है। ये शौल की अन आज्ञाकारिता थी कि उसने शरीर की इच्छा को रहने दिया, जो वर्षों बाद उसके वंश को नष्ट करने आ रहा है। हामान आगागी को राजा शेयर्स ने उच्च पद दिया था और आज्ञा निकाली कि जब वो निकले सब झुककर उसको दंडवत किया करें, परंतु मोर्देकाई ने ऐसा नहीं किया। यहूदी परमेश्वर की व्यवस्था का पालन कठोरता से करते थे और वे किसी मूरत या मनुष्य के सम्मुख दंडवत नहीं करते। मोर्देकाई एक कदम आगे रहा, वो किसी मनुष्य के सम्मुख नहीं झुकता था, वो केवल परमेश्वर के सम्मुख झुकता था और अपने घुटने टेकता था। ऐसा आदर वो सिर्फ परमेश्वर को देता था, इसलिए जो लोग उसके चारों ओर खड़े थे कहने लगे, तू क्यों दंडवत नहीं करता? ये तो राजा की आज्ञा है। वो जवाब देता, मैं यहूदी हूं, हम परमेश्वर को छोड़ और किसी के सामने नहीं झुकते। किसी ने हामान को बताया कि ये एक यहूदी मुर्देकाय है जो उसके सामने न झुककर आज्ञा का उल्लंघन करता है। वो देखना चाहते थे कि इस आज्ञा का प्रभाव कितना है। ये जानकर हामान इतना अधिक क्रोधित हुआ कि उसने समस्त यहूदियों के विनाश की योजना बनाई। उसने दुष्ट आत्माओं की अगुवाई में चिट्ठी डाली कि यहूदियों के विनाश के लिए कौन सा महीना सफल होगा। चिट्ठी में 12वां अर्थात मार्च का महीना निकला। अध्याय 3 पद 8 और 9। और हामान ने राजा शयर्ष से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितर बितर और छिटकी हुई एक जाति है जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न है, और वे राजा के कानून पर नहीं चलते। इसलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक महत्व नहीं है। और उन्होंने कहा कि यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए, और मैं राजा के भंडारियों के हाथ में राज भंडार में पहुंचाने के लिए 10,000 चांदी के सिक्के दूंगा। सच तो यह है कि करीब 9 करोड़ रुपयों की घूस दे रहा था। अतः उसकी योजना ये थी कि यहूदियों को मार डाला जाए तो वो उनकी संपत्ति लूटकर उसे घूस दे पाए। वो उन्हें मारकर उनका सफाया करना चाहता था। अध्याय 3 पद 10 और 11। तब राजा ने अपने अंगूठी अपने हाथ से उतारकर आगागी हमदाता के पुत्र हामान को, जो यहूदियों का बैरी था, दे दी। और राजा ने हामान से कहा, आदेश निकालो और मोहर लगा दो। वो चांदी तुझे दी गई है और वे लोग भी, ताकि तू उनसे जैसा तेरा जी चाहे वैसा ही व्यवहार करे। और राज्य के सब प्रांतों में इस आशय की चिट्ठियां हर डाकियों के द्वारा भेजी गई। उस समय दारा फारस का राजा था, जिसने राज्य भर में संदेश भेजने का एक उत्तम तरीका निकाला था। उसने कहा, घोषणा करो कि राज्य भर में इन लोगों को 12वें महीने की 13 तारीख को मृत्यु के घाट उतारा जाएगा। अध्याय 3 पद 13 में। और राज्य के सब प्रांतों में इस आशय की चिट्ठियां हर डाकियों के द्वारा भेजी गई कि एक ही दिन में, अर्थात आदार नाम 12वें महीने के 13वें दिन को, क्या जवान क्या बूढ़ा, क्या स्त्री क्या बालक, सब यहूदी विश्वासघात और नाश किए जाएं, और उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। उन्हें मार डालना और जो कुछ उनका है तुम सब ले लेना। अध्याय 3 पद 14 और 15। उस आज्ञा के लेख की नकलें सब प्रांतों में खुली हुई भेजी गई कि सब देशों के लोग उस दिन के लिए तैयार हो जाएं। ये आज्ञा सूशनगढ़ में दी गई और डाकिया राजा के आज्ञा से तुरंत निकल गए, और राजा और हामान तो जेवनार में बैठ गए, परंतु सूशन नगर में घबराहट फैल गई।